भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य।
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका योग रहस्य में। भाई बहनों, योग रहस्य में योग पर चर्चा करते करते एक बात तो हमें समझ आ गई है कि योग हमें हमारी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का मालिक बना देता है। आप इसे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक यंत्र को यूज करते हैं, वैसे आप अपने मन को यूज करके जैसे चाहे अनुभव पा सकते हैं। जैसे गर्मी लगती है, आप एसी ऑन करते हैं, ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसे ही बाहर का वातावरण कैसा भी हो, आप योग की शक्ति से अपने अंतर के वातावरण को जैसा चाहे बना सकते हैं और बाहर की परिस्थितियों से बेटर डील कर सकते हैं। तो है ना, ये बिल्कुल जादुई शक्ति की तरह। तो आइए इसे और गहराई से आ समझते हैं अपने योग विशेषज्ञों के साथ, जो कि आज हमारे मेहमान हैं। आइए मैं आपका परिचय उनसे करवाता हूं। हमारे साथ है राजयोगिनी उषा दीदी जी।
ओम शांति।
हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशीला चौधरी जी, जो कि जोधपुर से पधारी हैं, पेडिटिशियन हैं आप। और हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो कि योगा के इंस्ट्रक्टर हैं। तो आइए चर्चा शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुशीला बहन के पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने योग की अनुभूतियां योग के अभ्यास करने से पहले ही बहुत गहरी की हैं। उन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए हैं, तो उनसे बात करते हुए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे अनुभूति की। सुशीला जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपने किया है, उसने आपके जीवन पे कैसे प्रभाव डाला और वो एक्सपीरियंस कैसा था।
जी, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैं जब 27-28 ईयर एज में थी, तो हम लोग सिरोही में पोस्टेड थे और मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर वहां काम कर रही थी। तो घर में एक दिन डस्टिंग कर रही थी, उसी टाइम मुझे थोड़ा सीवियर पेन हुआ इधर। तो मेरा ऑफ था उस दिन, मतलब ड्यूटी से ऑफ थी। तो एकदम मुझे इतना सीवियर पेन हुआ कि मुझे लगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। तो मैंने उस क्षण में अपनी बॉडी को सोचा संभालूं इसे। तो पास में डबल बेड था, डस्टिंग कर रही थी स्टूल पे चढ़ के। तो मैंने थोड़ा संभलते हुए, जैसे थोड़ा तो अपन को ध्यान रहता है, कॉन्शियसनेस की गिरूंगी चोट लगेगी, तो मैंने अपनी बॉडी को पलंग पे गिरा दिया
जी।
लेकिन अचानक मैंने देखा कि आवाज आई है बॉडी गिरने की, पर मैं वहां नहीं हूं, गिरी नहीं
है।
तो मैं जो हूं ऊपर, यहां बेड से 4-5 फीट ऊपर, यहां अपने आप को महसूस कर रही हूं। वो मेरे लिए बिल्कुल एकदम अनोखा क्षण था। मैं एकदम सरप्राइज्ड भी थी और एकदम से, मतलब हैरान हो गई मैं कि ये क्या हो गया, मैं तो वहां हूं
जी,
और मैं अपने आप को रियलाइज यहां कर रही हूं
जी, मैं दो जगह कैसे,
दो जगह कैसे हो गई,
ये दो सुशीला कहां से प्रकट हो गई,
दो सुशीला कैसे प्रकट हो गई, क्योंकि मैं अपने आप को सुशीला ही समझ रही हूं और बॉडी समझ रही हूं। तो फिर उसके बाद मैं, मेरे को कुछ भी सूझा नहीं और मैं एकदम बेचैन हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं दो हो गई शायद। तो वहीं ड्रेसिंग टेबल रहती है, अपना अपना सिस्टम होता है, जैसे कि बेडरूम में। तो मैं उसके सामने जैसे मूव कर सकती हूँ और मैं उसके सामने जाके ऐसे देखना चाह रही हूँ कि मैं दिखाई दे रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं उसमें दिखाई नहीं दे रही हूँ। मैंने अलाइनमेंट तक भी चेक किया कि पीछे जो पिक्चर है वो दिख रही है मिरर में। मैं रोज यहाँ खड़ी रहती हूँ, मैं दिखती हूँ, अभी भी मैं यहाँ फील कर रही हूँ मैं खड़ी हूँ, लेकिन मैं दिख नहीं रही हूँ। तो फिर मैं इतना बेचैन हो गई कि फिर मुझे ये नहीं एहसास हो रहा कि मेरी मृत्यु हुई है या क्या हो गया, कुछ नहीं मालूम मुझे। ये बेचैनी कि मैं दो कैसे हो गई।
ओके।
तो मैं उस टाइम गिरते वक्त जरूर मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिया था, तो वो दौड़ के आ गए, तो वो मेरी बॉडी पे कुछ लगे हुए, उसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा। तो मैं इतना बेचैन हुई, मुझे लगा कि जैसे मैं रोने जैसी स्थिति में हूं, पर मैं अपने आप को देख भी नहीं पा रही हूं। तो मैंने कहा कोई है यहां पे जो मेरी मदद करेगा।
ओके।
ऐसा मैंने दिल से, मतलब ऐसे कहा। तो मुझे लगा कि ऊपर कोई है पावर, मुझे नहीं पता है, पर मुझे ऐसे फील हुआ कुछ वेव्स जैसा, वेवलेंथ है वो मेरे को यहां जैसे टच हुई। मुझे ऐसे फील हो रहा है वहां कि मेरी बॉडी में, जैसे मैं हूं, बॉडी हूं पर मैं
अच्छा,
दिखती नहीं हूं,
लेकिन शरीर नहीं हूं, कुछ अलग तरह का मैं,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूं वहां बॉडी के रूप में। मेरा میں کھوپڑی یا ہوگی ایسا میں ریئلائز
مطلب آپ کے آپ کو اپنے وجود کا
ایکسپیرینس کو ڈسکس کرتی ہوں نا میرے کو ایکسائٹمنٹ واپس وہی ایک دم
آپ آرام سے بتائیے ہم سہج سننا چاہیں گے
تو مجھے ایک دم لگا کہ وہ ویو لینتھ جو ہے وہ میرے کو یہاں پہ چھو رہی ہے اور وہ کچھ میگنیٹک ٹائپ تو ان میں شبد بھی آیا اچھا تم جاننا چاہتی ہو تو مجھے لگا یہ کون ہے مجھے کچھ معلوم
آواز نہیں تھی پھر بھی آپ میسج کنوے
جیسے ہم موبائل پہ آواز جیسے کوئی میسج سن لیتے ہیں ایسے مجھے لگا کوئی پوچھ رہا میں نے کہا ہاں مجھے جاننا ہے مجھے کیا ہو گیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اس نے جو ویو لینتھ تھی اس نے صرف مجھے کہا دیکھو تو مجھے اپنے آپ ایسے سمجھ میں آیا کہ وہ اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنی باڈی کو دیکھوں تو میں اپنی باڈی کو دیکھنے لگی تو وہ باڈی جو ہے اوپر کی کورنگ جیسے اس کی گلاس کی ہو گئی اور اندر سارے آرگن مجھے میڈیکلی طریقے سے دکھائی دے رہے
آپ خود ڈاکٹر تھی تو آپ سمجھ سکتی
ہاں تو وہ شاید اسی لیے انہوں نے مجھے اسی طریقے سے دکھانا ہوگا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے سارے آرگن جو ہے لیور ہے کڈنی ہے سب فنکشن کر رہے ہیں لنگس فنکشن کر رہے ہیں لیکن میرا ہارٹ جو ہے نا وہ بالکل فڑفڑا رہا ہے ایسے بالکل جیسے 200-250-300 کی اسپیڈ سے چڑیا مرتی ہوئی سے فڑفڑاتی ہے نا ایسے کر رہا ہے تو میں ایک دم میڈیکلی نالج ہونے کے میں سمجھ گئی کہ اچھا یہ پمپنگ نہیں کر پا رہا ہے صرف آواز کر رہی ہے موٹر چل رہی ہے اور اس سے بلڈ نہیں پھینکا گیا تو مجھے کلیئر ہو گیا کہ یہ جو چیز ہے وہ آکسیجن کی کمی ہونے سے مجھے پین ہوا کیونکہ بلڈ سرکولیشن تو ہو نہیں رہا اور پین ہونے سے میں باہر کود گئی
لیکن
جیسے میں نے یہ سینٹینس میں نے اپنے آپ کو کلیئر میرے کو اپنے آپ کلیئر ہوا کہ میرے کو ایسی عادت ہے کہ جب میرے ساتھ ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے میں باہر کود جاتی ہوں
جی
تو جیسے ہی میرے کو لگا کہ میں باہر کود گئی تو مجھے یہ جیسے ریمائنڈر کسی کو دلایا جاتا ہے نا کہ جیسے مجھے بھی ریمائنڈر دلایا کہ میں اس سے کود سکتی ہوں ایسی میری ایبلٹی مجھے ہے تو میں ایک دم نشچنت ہو گئی اس کے بعد ایک دم ریلیکس ہو گئی کہ اچھا مجھے ایسے آتا ہے یہ تو میرا کوئی وہیکل ہے میں یہ نہیں ہوں میں کودنا آتا میں کود گئی
جی
تو اب ایک دم سے میں ریلیکس ہو گئی مجھے اور کوئی سی چیز کا نہ تو ایکسپلینیشن ملا نہ میرے کو جیسے سمجھنے کی ضرورت ہی تھی
بالکل
اب میں اس ایگزسٹینس کو فیل کرنے لگی کہ میں کود گئی کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا بڑا پیسفل ایک دم اتنا شانتی کی میرے کو لگ رہا ہے کہ میں بالکل ہلکی ہوں ایک دم اور میں چاہوں کہ میں اڑ جاؤں کدھر بھی
اوکے
اس طرح کا ایکسپیرینس تھا پر وہ شاید مجھے نہیں پتا ٹائم بینگ وہ 20-30 سیکنڈ رہا ہوگا اسی دوران میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ آئے وہ باڈی کو ریوائیو کر رہے تھے تو میرے کو اس میں انٹرسٹ بھی نہیں آ رہا مجھے تو وہ اتنی اچھی لگ رہی پوزیشن آؤٹ آف باڈی جو تھی
جو ایکسپیرینس تھا بڑا سکھدائی
اتنا لائٹ اتنا سکھدائی اتنا شانت تو میں نے سوچا کہ میں تو اڑ بھی سکتی ہوں ایسے سنکلپ کروں گی تو اڑ جاؤں گی تو میں سوچا چلے یہاں سے باہر چلتے ہیں تو جیسے ہی میں نے یہ تھاٹ جیسے میرے ایمرج ہوا کہ میں تو چلتی ہوں یہاں سے تو وہ ویو لینتھ پھر کنیکٹ ہو گئی مجھ سے
اچھا
نہیں یہیں ٹھہرو تو اب میں تھوڑی سی گھبرائی کہ یہ کون ہے جو آرڈر بھی کر رہا ہے لگتا ہے پہرے دار کی طرح ہی کھڑا ہے اوپر مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے پر مجھے اندر سے ایسی فیلنگ آئی کہ جو بھی ہے نا میرا فیتھ فل ہے
جی
اور اسے میں پریچت تو ہوں پر میں ایگزیکٹلی اس کا نالج مجھے نہیں ہے
جی
لیکن
جی
میں اس کو جانتی ہوں کہیں نہ کہیں میں اس سے جڑی ہوئی ہوں اور اس کو مجھے فالو کرنا پڑے گا میں اس کو ڈس اوے نہیں کر سکتی ہوں ایسا میرے انٹرنلی میرے کانشیس سے نکلا تو میں نے کہا ہاں اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے جب اسی نے تو مجھے کہا ہے بتایا ہی ہے کہ میں کیا ہوں کیسے ہوں تو اسی نے کہا ہے کھڑی رہو تو میں ٹھہر گئی تو پھر میں نے کہا آپ کھڑے کھڑے اس روم میں کیا آبزرو کرنا تو جو گھٹنا ہو رہی ہے اسی کو ہی دیکھوں تو پھر میں دیکھنے لگی اس کو دھیان سے کہ میرے ہسبینڈ اتنے میں ایک دو اور کوآرڈینیٹ ان کے ساتھ میں اسٹاف وہ لوگ ریوائیو کر رہے تھے جو بھی میڈیکلی ایفرٹ کر رہے تھے تو ایک دم میں اپنے چہرے ہسبینڈ کا چہرہ دیکھی تو میں وہاں دیکھ سکتی تھی
جی
یہ میری ایبلٹی تھی کہ میں دیکھ سک رہی تھی ان کے من میں کیا چل رہا ہے وہ مجھے سننے کی ضرورت نہیں میں ان کی لپ ریڈنگ دیکھ لیتی ہوں تو میرے کو سمجھ میں آ جاتا ہے
سپشٹ ہو جاتا ہے
بالکل
پتہ لگتا ہے
کہ جیسے اس کے مائنڈ کو ہی میں ریڈ کر لیتی ہوں سیدھا سیدھا ایسی میری ایبلٹی وہاں ہے تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے تو وہ نشچت روپ سے میں نے دیکھا کہ یہ ہارٹ ایسا ہے تو وہ بھی ڈاکٹر ہیں
جی
تو وہ پیلا ہی پڑے گا کام نہیں کر رہا تھا پر مجھے آشچر تھا کہ یہ ایسا مجھے کیوں نہیں دیکھ کے خوش ہو رہے اسے دیکھ کے دکھی کیوں ہو رہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں نہیں سمجھ رہے خیر اس پہ ایفرٹ کر رہے پھر میں تھوڑا ادھر ادھر دیکھا اتنے 2-4 سیکنڈ کچھ بیتے ہوں گے اچانک میرے ہسبینڈ کا چہرہ ریڈ ہو گیا مطلب رونق آئی ان کے چہرے پہ تو میں نے کہا ان کو کیا ہوا اب کیا ایسا چینج ہو گیا جو یہ لال منہ ہو گیا ان کا اور خوش لگ رہے تو میں نے پھر دیکھنا چاہا تو ویسے وہ پھر ٹرانسپیرنٹ ہو گئی باڈی اور پھر مجھے لگا کہ وہ ہارٹ جو ہے نارمل بیٹنگ کر رہا ہے تو اب جو اندر اپنے گیان ہے तो वो तो रहेगा,
वो आत्मा के साथ रहता है। इसलिए एक चीज पता लगती है,
मतलब वो
बात आत्मा शरीर से परे भी होती है, तो एक तो उसके पास ज्ञान रहता है थोड़ा, और वो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वो स्थूल के आर पार भी देख सकती है चाहे तो।
तो मुझे लगा कि हाँ अब ये हार्ट ठीक हो गया ना, ठीक पंपिंग कर रहा है, तो अब सर्कुलेशन भी ब्लड का नॉर्मल हो गया बॉडी में। तो मैंने सोचा अच्छा, इसलिए मेरे हस्बैंड खुश है कि इनके सामने ये जो व्हीकल है, इनकी टेंशन थी ये ठीक हो जाए, तो ये सिस्टम ठीक हो गया, तो मैं भी रिलैक्स हुई कि चलो इनका टेंशन ठीक हुआ तो मेरा भी ठीक हुआ। तो जैसे ही मैं ऐसे संतुष्ट हुई, वो वेवलेंथ फिर मुझसे कनेक्ट हुई, कहती है अब ठीक है ना सब, तुम संतुष्ट हो? मैंने कहा हाँ संतुष्ट तो हूँ, सब ठीक है। तो कहती जाओ अंदर, और बस ये शब्द आए और मेरा एग्जिस्टेंस खत्म। मुझे ये एक क्षण
फ्रैक्शन ऑफ शरीर में पता नहीं,
अब मुझे लगा कि मैं पलंग पे पड़ी हुई हूँ, मेरा ये एग्जिस्टेंस गायब है, और फिर मैं इतना वीक महसूस कर रही हूँ, मेरे हाथों में वीकनेस हो रही है
जी।
और फिर मैं उस एक्सपीरियंस को,
हम इस एक्सपीरियंस को जरूर सुनना चाहेंगे, बहुत ही प्यारा अनुभव है। हमारे बीच राजयोगिनी उषा दीदी जी है, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने भी हमारे साथ ये सुना है, योग की दृष्टि से इसको क्या कहेंगे, कैसी अनुभूतियां हैं ये?
योग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो आत्मस्थिति और देह भान, ये दोनों जैसे महसूस किया उन्होंने, कि भले उनको नॉलेज नहीं था कि मैं आत्मा हूं
जी,
और सूक्ष्म स्वरूप में है, क्योंकि आत्मा का एक तो फिजिकल बॉडी है, दूसरा जब आत्मा शरीर से निकलती है
जी,
तो एक सूक्ष्म बॉडी होता है, कि जिस बॉडी के माध्यम से वो देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो सूक्ष्म बॉडी के आधार से वो देख रहे थे। और जैसे कहा, सूक्ष्म बॉडी को के माध्यम से आत्मा के साथ कोई कम्युनिकेट फिजिकल लेवल पर करे जरूरी नहीं, लेकिन थॉट रीड कर सकते थे, ट्रांसपेरेंट हो गई, वो सब कुछ देख सकते, माना आत्मा के पास वो शक्ति है, क्षमता है, जो दीवार के थ्रू भी देख सकती है।
मतलब शरीर कहीं ना कहीं एक हमारी लिमिटेशन कर देता है,
बैरियर जीवन में महसूस हुआ है
जी। हाँ,
तो एक बैरियर बन जाता है, जिस कारण से हम अभी सामने वाले के व्यक्ति के विचार क्या है नहीं जान सकते हैं।
हाँ जी।
लेकिन यही सूक्ष्म बॉडी से अगर बाहर निकलते हैं तो सब कुछ हम जान सकते हैं
जी।
और ईश्वर के साथ भी कनेक्ट होना सहज हो सकता है, जो उन्होंने कहा है एक मैग्नेटिक वेव्स,
उन्होंने उस बात की इच्छा प्रकट की कि मेरी कोई मदद करे, तो वो
हाँ,
जैसे उस समय हाँ, वो तो कनेक्ट हो गए वो,
क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में थे ना, तो सोल कॉन्शियसनेस होने के कारण सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ एक सीधी कनेक्शन हमारी जुड़ जाती है। और यही तो योग है, योग में हम एक कॉन्शियस लेवल पर हम ये अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। ये योग है कि जहां हम बॉडी कॉन्शियसनेस को एकदम भूल जाए, विस्मृत हो, और मैं आत्मा हूं, इस आत्मभाव में हम अपने आप को स्थित करें, और फिर उस परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़े या कम्युनिकेशन करें।
हम जैसे योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, सुशीला बहन को ये जो अनुभव हुआ वो स्वाभाविक रूप से अचानक हुआ। योग में हम अपने आप को शुद्ध ऊर्जा, रूह या आत्मा के रूप में महसूस करते हैं, तो उस समय भी कभी ऐसे अनुभव होते हैं योगियों को कि अचानक वो शरीर से परे चले?
बिल्कुल होते हैं। पहले के जमाने के योगी लोग कहते थे शरीर कहाँ छोड़ करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से चले भी जाते थे। वो एक ऋषि की कहानी है कि जब उसको किसी ने कहा कि तुम्हें राज कारोबार चलाने का क्या अनुभव है, तो उसने अपने शरीर को गुफा में छोड़ करके वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से एक राजा के शरीर में प्रवेश करके वो राज कारोबार कैसे चलाना होता है उसका भी अनुभव करके आ गए। तो एक समय था जब ऋषि मुनियों के साधना की शक्ति के आधार से ये कर सकते,
मतलब योग से ऐसी दिव्य अनुभूतियां भी हो सकती हैं, करने वाले पे है या परमात्मा की मेहर हो, कुछ ऐसा हो जाए
जी,
तो वो भी कहेंगे,
इसी को योग कहते हैं
जी।
जो मेडिटेशन, ध्यान, समाधि जो है वो इसी के आधार से, ये एक फर्स्ट स्टेप है।
कि हम अपनी जो वास्तविकता है, हमारा वास्तविक रूप है, उसको समझ सकें और उसकी अनुभूति करते हुए फिर जीवन जी सकें। और ये योग का बहुत बड़ा है, आई थिंक सारा नजरिया बदल जाएगा, पूरा खेल ही बदल जाएगा ऐसा।
यही मेडिकल के हमारा जो फोर्थ पिलर है
जी,
हेल्थ की डेफिनेशन में आता है फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल
जी।
लेकिन जब हमने पढ़ाई की, मैंने मेडिकल की, तो स्पिरिचुअल पे एक पैराग्राफ जस्ट था हमारी बुक में, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे अब उस पर एक पूरी बुक लिख सकती हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी जो पिलर है उसको डेवलप करना बहुत जरूरी
है,
और कंप्लीट हेल्थ के लिए वो किस तरह उपयोगी होगा अब मुझे समझ में आया।
मुझे लगता है ये तो इन्होंने मेडिकल में बहुत दूर जाके पढ़ा है, कहीं ना कहीं बचपन में इसकी जड़ें बच्चों को डाल देनी चाहिए।
बिल्कुल,
क्योंकि जो एजुकेशन है वो बड़ी ही बाहरी है, उसका सच्चाई के साथ, आंतरिक सच्चाई के साथ बहुत कम रिश्ता जुड़ता है उसको। बच्चों को धीरे धीरे प्रोफेशनली ट्रेंड करते जाते हैं और किसी एक जॉब में लगा दिया जाता है।
पहले के समय में गुरुकुलों में यही तो सिखाया जाता था, जो श्री राम श्री कृष्ण आदि पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में जाते थे, ऐसे शास्त्रों में जो आता है, तो उस समय उन्हें क्या पढ़ाया जाता था
जी?
ये सोल कॉन्शियसनेस की जो विद्या है वो कॉन्शियसनेस में स्थित रहने की विद्या पढ़ाई जाती थी, तभी तो वो दूसरों को समझ सकते हैं।
लेकिन एक बड़ी जरूरी बात ये है कि जो पढ़ा रहा है उसको ये अनुभूति बहुत अच्छी होनी चाहिए,
होनी चाहिए।
जैसे सुशीला बहन कह रही थी, हम सबको कितना सहज अनुभव हो रहा था क्योंकि वो उस अनुभूति से गुजरे हैं। तो खाली बच्चों को नहीं, टीचर को भी ट्रेन करना पड़ेगा, सब टीचर्स को, कि वो इस विद्या में माहिर हों, इसकी आध्यात्मिकता की और गहराई को जानते हों,
क्योंकि तब व्यक्ति दूसरे के भाव को समझ सकता है। जैसे उन्होंने कहा, मैं अपने हस्बैंड के भाव को समझ सकती थी। तो मनुष्य एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेवल अंदर से विकसित कर लेता है जब अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को उठाता है, राइज करता है, असेंड करता है, तो उस लेवल तक आ जाता है कि सामने वाले भाव को, तो मैं समझती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कम हो जाएंगी
जी,
ईगो क्लैशेस बहुत कम हो जाएंगे और उसके आधार से हमारे जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के साथ बहुत सुमधुर हो जाते हैं,
क्योंकि आप सच्चाई को जानते हैं। आप किसी भी चीज के साथ आप समझते ही सच्चाई को, पहले की तरह वो क्लिंग नहीं हो सकेंगे उसके साथ, अपनी पकड़ उस तरह की नहीं रख पाएंगे आप, यूज करेंगे हर चीज। हमारे दिनेश भाई की तरफ आना चाहूंगा मैं, उनसे जानना चाहूंगा, आप योगा के इंस्ट्रक्टर हैं, कि आजकल जो वीकनेस है, कमजोरी महसूस होना, लोग सारा दिन ही कहीं है, सुबह से उठते हैं रात तक वो कमजोरी महसूस करते हैं, उनको वीकनेस ही लगती है, या थोड़ा सा काम करेंगे बड़ी जल्दी थकावट महसूस करते हैं। योगा में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर सकें। ऑफिस में काम करते हुए, घर में हमारी बहनें काम करती हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा यूज करें जो तुरंत उनको ऐसी अच्छी ऊर्जा महसूस हो।
मैं बताना चाहूंगा कि योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे एनर्जी को स्टिमुलेट करने में मदद करती हैं। जैसे सिंपल सी चीजें हैं कि सभी लोग हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं
जी,
लेकिन कुछ ब्रीदिंग से जो हमारे चक्र हैं, योग शास्त्रों में कुछ चक्र माने जाते हैं, उन चक्रों को अगर हम क्लीन करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो उन चक्रों की क्लींजिंग हमारे शरीर को एनर्जेटिक बनाने में मदद करती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारा विशुद्ध चक्र है जो गले पे स्थित माना जाता है, तो जितना हम ब्रीदिंग की कंबाइंड हीट को 15 से 20 बार गहरा श्वास हमने लिया और गहरा श्वास अंदर की तरफ खींचा, उस कंबाइंड हीट को हम अपने गले तक टच करते हैं, वोकल कॉर्ड तक टच करते हैं
जी,
तो हमारा विशुद्ध चक्र पूरी तरह से खुलता है। इसी तरह से जो दूसरा चक्र माना जाता है आज्ञा चक्र, जो हमारी भ्रकुटी के बीच में स्थित है, साइंस ने बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में अभी मालूम की है कि किस तरह से हाइपोथैलेमस में हमारी एनर्जी स्टोर होती है
जी,
लेकिन योगी लोग इस चीज को बहुत पहले से जानते थे। और आज्ञा चक्र जितना उनका क्लीन होता था, जितना क्लींजिंग वो करते थे ब्रीदिंग के साथ साथ, कि श्वास को आपने महसूस करना है कि श्वास आपका टच करता है आपके भ्रकुटी के बीच तक, और वहां से आपने श्वास को फोर्सफुली बाहर की तरफ फेंका है, तो वो क्लींजिंग आज्ञा चक्र की, उस आज्ञा चक्र को खोलती थी और आज्ञा चक्र उनका सिद्ध होता था। इसी तरह से योगी लोग जब ध्यान में बैठते थे तो वो सहस्र चक्र पे ध्यान करते थे, और सहस्र चक्र की जो शुद्धि थी वो बिल्कुल ब्रेन का जो सेंटर पार्ट है हमारा, ब्रेन के तीन पार्ट्स माने जाते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला, तो सर के मध्य में जो स्थित है हमारा, वहां तक उन्होंने ब्रीदिंग को फील करना है, श्वास गहराई से लेना और गहराई से श्वास को फेंका, जितना गहराई से हम सांस को बाहर फेंकते हैं, एक तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करती हैं क्रियाएं, वाइटल कैपेसिटी हमारी इंप्रूव होती है, और सहस्र चक्र जितना सिद्ध होता है, जितना खुलता जाता है, उतना जो प्रकाश की फीलिंग थी कि सोल को कंसंट्रेट करके, अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके कहां तक योगी लोग बैठाते थे, तो वो सहस्र चक्र में अपनी प्रकाश की फीलिंग में काफी देर तक स्थित रहते थे, जिससे उनका एनर्जी लेवल बढ़ता था।
जी दिनेश भाई, हम चाहेंगे कि आप हमें ये थोड़ा क्रियाएं करके भी बताएं।
ब्रीदिंग की कंबाइंड हीट को हमने फील करना है अपने आज्ञा चक्र तक, और आज्ञा चक्र हमारा भ्रकुटी के बीच में स्थित है, जहां तक हम महसूस करेंगे डीप ब्रीदिंग, श्वास लेना और छोड़ना गहराई से। देख लीजिए एक बार, मैंने गहरा सांस लिया और महसूस किया कि हमारे आज्ञा चक्र तक वो टच करते हैं।
तो महसूस ऐसे करना है कि जो मेरी ब्रीदिंग है वो इसको जाके छू
टच करती है और वापस आती है।
ओके,
और इसी तरह से आप सहस्र चक्र जो है हमारा ब्रेन का जो बीच वाला पार्ट है, जो सर के मध्य में स्थित है, वहां तक आप गहरी सांस खींच सकते हैं। इसी तरह से आप महसूस करते हैं कि सांस का जो कंबाइंड हीट है आपके सर के मध्य भाग तक टच करता है और वहां से वापस आता है, जो सहस्र चक्र को क्लीन करने में मदद करता है। और अगर बॉडी की एनाटोमी हम लें तो शरीर के जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, उन तीनों की क्लींजिंग करने में क्रियाएं मदद करती हैं, जिससे हमारी सूक्ष्म शक्ति एनर्जी हमारी इंप्रूव होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई जी, हम जरूर इसको करके देखेंगे और हमारे दर्शक भी करेंगे। आइए अब एक योग की क्लिप देखते हैं और योगी का एक और अनुभव प्राप्त करते हैं।
योग का बहुत ही महत्व है और योग पर विशेष प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ध्यान है, और सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो योग का अर्थ ही है जोड़, मिलन, संबंध, किसका किससे, आत्मा का परमात्मा से। लेकिन अभी तक जो शारीरिक योगा करते हैं उसमें शरीर को तो स्वास्थ्य मिलता है, लेकिन मन के द्वारा जो आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ होता है वो एक संपूर्ण योगा है, जिसमें परमात्मा शक्ति, परमात्मा गुणों का, परमात्मा प्यार का हम अंदर अनुभव करते हैं, और आत्मा अपने आप को अति शांति, अति सुख, आनंद, शक्ति से भरपूर अनुभव करती है। तो ऐसा जो योग है, इस योग में जब आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है तो स्वयं को देह के भान से परे करती जाती है, और तब ही परमात्मा के साथ उसका संपूर्ण संबंध जुड़ता है। और ऐसा संबंध जब जुड़ता है तो वो अपने देह के भान से दूर होती जाती है और अपनी कर्मेंद्रियों की भी राजा बनती जाती है। और ऐसा होने से जब कोई भी परिस्थितियां ऊंची नीची होती हैं, तो चाहे कर्म भोग आए, तो भी कोई बीमारी, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें भी अपने देह को देह न समझते हुए, देह से कर्म करते हुए भी आत्मा समझने के कारण दुख की परिस्थिति में भी दुख की महसूसता नहीं होती है। और कितना भी शरीर में दर्द भी हो रहा हो तो देह से न्यारे रहने का अभ्यास हो जाने के कारण वो दर्द भी कम महसूस होता है। साथ साथ कैसी भी विपरीत हलचल वाली परिस्थितियां भी आ जाए तो मन बुद्धि को स्थिर रखने की शक्ति आत्मा में आ जाती है, और इसी वजह से कैसी भी परिस्थिति में सहन करना, समा लेना, सामना करना, कैसी भी परिस्थिति में निंदा स्तुति, मान अपमान में भी इन सब बातों से परे रहकर अपनी स्टेबल स्थिति में रखना अपने मन बुद्धि को, ये बहुत ही सुंदर योग के द्वारा अनुभूति होती है। मुझे भी इस राजयोग का अभ्यास करते हुए लगभग 45 वर्ष हो गए हैं। छोटी सी उम्र से, 18 वर्ष की उम्र में मैंने ये करना शुरू किया, और आज लगभग 45 वर्षों से मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जो बातें मैंने बताई उन सभी बातों का मुझे व्यक्तिगत जीवन में अनुभव होता रहा है और परमात्मा शक्तियों को बहुत ही अच्छी तरह से जीवन में हमने अनुभव किया है और उसी के आधार से ही जीवन में चल रहे हैं और उसी के आधार से हम अन्य आत्माओं को भी उस राजयोग का अभ्यास कराकर उनके जीवन में तनाव, अशांति और अनेक प्रकार के डिप्रेशन, दुख, कई प्रकार के परिस्थितियों में उनको मदद करते हैं। राजयोग सिखलाकर उनका जीवन भी सुखद होता जाता है और सुखमय बनता जाता है।
तो दोस्तों, देखा आपने ये एक और अनुभव, योग के कितने प्यारे अनुभव हैं और इतने अथाह है कि हर कोई इसकी अलग अलग तरह से अनुभूति करता है और इस शक्ति से अलग अलग तरह से लाभ लेता है। तो आप भी अपने जीवन में बहुत सारा लाभ लेंगे। आज बहुत ही सूक्ष्म बातें योग की खुलकर सामने आई है, उनकी अनुभूतियां खुलकर सामने आई है। साथ ही साथ मैं अपने आदरणीय मेहमानों को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अपने अनुभव और अपने ज्ञान को हमसे बांटा है। मैं दीदी उषा जी को शुक्रिया कहता हूं, बहन सुशीला चौहान जी को जो कि हमारे बीच पधारी हैं जोधपुर से, भ्राता दिनेश शर्मा जी दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, योगा के इंस्ट्रक्टर हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, हम ये एपिसोड आपके लिए लेकर आते हैं कि आपका जीवन महके खिले, आप बहुत सुंदर अनुभूतियां पाएं योग के द्वारा, क्योंकि बगीचा जीवन का हमें खुद ही आबाद रखना है। जीवन जीने के साथ साथ जीवन को बनाना भी याद रखना है और योग आपके जीवन को बनाता है, संवारता है। तो रीडिस्कवर एंड रीक्रिएट योरसेल्फ विद योग। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और योग की बारीकियों गहराइयों के साथ। अभी दीजिए इजाजत, ओम शांति, नमस्कार।